आज है 18 दिसंबर दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। 16 दिसंबर 2012 को हुए सामूहिक बलात्कार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग अपराधी की रिहाई पर रोक लगाने से किया इनकार।
हमारे लाख प्रयास के बावजूद इतना क्राइम करने वाला मुजरिम आखिरकार हमारी कोर्ट और हमारी सरकार ने छोड़ दिया। जो हमें आश्वासन मिला था कि हमको इंसाफ मिलेगा, वो इंसाफ नहीं मिला।
आज रिलीज हुई फिल्में बाजीराव मस्तानी और दिलवाले का भारत के कई भागों में हुआ विरोध, और आज विवेचना में बात होगी बॉलीवुड की एक संवेदनशील कलाकार स्मिता पाटिल की।
मैं मरूंगी तो मुझे स्वागत मनाना, दुखद बात है ये। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में किसी मेकअप आर्टिस्ट को करना पड़ा होगा, लेकिन ये पहला वक्त था मेरे लिए।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2012 के निर्भया बलात्कार मामले में दोषी लोगों में से एक की रिहाई को रोकने से इनकार कर दिया है। ये शख्स 18 वर्ष का था जब उसने ये अपराध किया। इसी रविवार उसकी रिहाई होनी है। कानून के मुताबिक एक नाबालिग अपराधी को जितनी सजा दी जा सकती है उतनी सजा वो काट चुका है। पीड़िता के परिवार और राजनेताओं ने इस सजा को बढ़ाने की मांग की थी। बलात्कार के दोषी अन्य 3 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है। वेटिकन ने इस बात की पुष्टि की है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा को संत के तौर पर मान्यता दी जाएगी। पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा के दूसरे चमत्कार को मान्यता दे दी है, जिसके बाद अगले साल उन्हें संत बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इतालवी कैथोलिक कॉन्फ्रेंस के अखबार इवेनर ने कहा है कि ये चमत्कार कई ब्रेन ट्यूमरों से पीड़ित एक ब्राजीली व्यक्ति के उपचार से जुड़ा है। इतालवी मीडिया के मुताबिक अगले साल सितंबर में उन्हें संत बनाए जाने का अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। रूसी जांचकर्ताओं ने पिछले महीने सीरियाई सीमा पर तुर्की द्वारा गिराए गए लड़ाकू विमान के फ्लाइट रिकॉर्डर को खोला है। इस पूरी प्रक्रिया को पत्रकारों, विदेशी राजनयिकों और लाइव टीवी कैमरा के सामने अंजाम दिया गया। तुर्की का कहना है कि उसने इस विमान को इसलिए गिराया था क्योंकि वो बार बार चेतावनी के बावजूद तुर्की की सीमा में दाखिल हो गया था। एक रूसी सैन्य अधिकारी सर्गेई द्रोनोव ने कहा कि रूस के पास इस दावे को खारिज करने के लिए पूरे सबूत हैं। फिलहाल हमारे पास वो सभी जरूरी सबूत हैं जिनसे ये साबित होता है कि रूसी विमान ने तुर्की की वायुसेना का उल्लंघन नहीं किया था। रूसी संघ के राष्ट्रपति के निर्देशों के मुताबिक फ्लाइट रिकॉर्डर को खोलने और फ्लाइट डेटा को डिकोड करने की पूरी कार्रवाई रूसी और विदेशी जनता के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। ये थे सर्गेई द्रोनोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफ्रीकी संघ ने घोषणा की है कि वो बुरुंडी में नागरिकों की हिफाजत के लिए 5,000 शांति रक्षक सैनिक भेजेगा, चाहे उसे बुरुंडी सरकार की सहमति मिले या ना मिले। आदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ की शांति और सुरक्षा परिषद ने इस सुझाव को मंजूरी दे दी, लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति की जरूरत होगी। बुरुंडी में राजनीतिक हिंसा में कम से कम 400 लोग मारे गए हैं। कल ही अफ्रीकी संघ ने कहा था कि वो बुरुंडी में जनसंहार नहीं होने देगा। खबर है कि यमन के उत्तर में सैकड़ों सरकारी सुरक्षा बलों ने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र को फिर हासिल कर लिया है। सुरक्षा बल सऊदी अरब से यमन में दाखिल हुए और हरद शहर पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों के साथ इस लड़ाई में सऊदी अरब सरकारी बलों का साथ दे रहा है। स्विट्जरलैंड में सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच हो रही शांति वार्ता के दौरान ही ये हमला किया गया है। यूक्रेन ने कहा है कि वो रूस के $3 अरब के कर्जे का भुगतान नहीं करेगा। इसी सप्ताहांत में यूक्रेन को इस राशि का भुगतान करना था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया मामले में नाबालिग अपराधी की रिहाई पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अदालत ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि नाबालिग अपराधी को पहले से तय समय के मुताबिक 20 दिसंबर को ही रिहा किया जाएगा और उसे सजा की मियाद से ज्यादा समय तक सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता। इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि जब तक नाबालिग की मानसिक स्थिति और समाज में रहने लायक होने का अंदाजा नहीं हो जाए उसे रिहा नहीं होना चाहिए। इस फैसले पर निर्भया की मां ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मैं इतने दिनों से न्याय के लिए लड़ रही थी और आज अपराध जीत गया है। एक रिपोर्ट के साथ दिव्या आर्या।
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक साल 2012 में ज्योति सिंह के सामूहिक बलात्कार और हत्या का नाबालिग अपराधी जो अब वयस्क हो चुका है उसे 20 दिसंबर यानी रविवार को रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन रूल्स 2007 के तहत अगर किसी नाबालिग की रिहाई की तारीख रविवार को पड़े तो उसे एक दिन पहले भी रिहा किया जा सकता है। ज्योति सिंह के परिवार ने कोर्ट के फैसले पर अफसोस जताया है। उनकी माँ आशा देवी ने कहा,
हमारे लाख प्रयास के बावजूद इतना क्राइम करने वाला मुजरिम आखिरकार हमारी कोर्ट और हमारी सरकार ने छोड़ दिया, तो जो हमें आश्वासन मिला था कि हमको इंसाफ मिलेगा वो इंसाफ नहीं मिला, आखिर एक मुजरिम छूट गया। इनका अगर मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहाँ रखेंगे क्या।
दिल्ली हाई कोर्ट के सामने सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर कर मांग की थी कि नाबालिग अपराधी को रिहा ना किया जाए, क्योंकि ऐसी जानकारी सामने आई है कि सुधार गृह में एक चरमपंथी के साथ रहने की वजह से वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वो सजा की मियाद नहीं बढ़ा सकती। साथ ही ये कहा कि कानून में जुवेनाइल अपराधियों के सुधार का प्रावधान है, पर अगर अपराधी में कोई सुधार न हो तो ऐसे में सजा बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है।
एक बड़ा खाई था जिस कानून बनी है कि सुधार नहीं हो तो क्या करना है, उसके बारे कोई प्रावधान नहीं है। उसी को मैंने पॉइंट आउट करके वो पिटीशन अब मार्च से उसकी बहस होगी।
कोर्ट ने याचिका में उठाए गए इस मुद्दे पर विस्तृत तरीके से सुनवाई करने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जवाब मांगा है। सामूहिक बलात्कार के 2012 के इस मामले के बाद बलात्कार विरोधी कानून और कड़े किए गए और इस मामले में दोषी पाए 3 वयस्कों को सबसे कड़ी मौत की सजा दी गई, लेकिन नाबालिग को नाबालिग से जुड़े कानून में अधिकतम 3 साल की सजा दी गई। इसके बाद नाबालिग से जुड़े कानून में भी बदलाव की मांग की गई और लोकसभा में विधेयक भी पारित हुआ जिसके तहत 16 से 18 साल की उम्र के नाबालिग अपराधियों पर जघन्य अपराधों के मामले में वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान है। पर यह विधेयक अभी राज्यसभा में पेश होना है। इस बदलाव की मांग करने वाले वकील सलिल देव सिंह बाली ने कहा,
कोई कानून की बुक में ये नहीं लिखा कि 3 साल से ज्यादा इसका सजा मिल सकती है। कल परसों में जब भी जो उनका होगा 3 साल का उस आदमी का, वो वॉक फ्री करेगा। एक जो कॉमन आदमी है उसकी ये आवाज है कि ये इसको सजा मिली, इसको तो क्या मिलेगी सजा। मतलब वैसे जो 18 साल और 16 साल के बीच में नाबालिग हैं जो ऐसे काम करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं पार्लियामेंट में जो इस समय प्रोसीडिंग चल रही है आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि बुधवार तक कुछ होगा इसमें।
हालांकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि प्रस्तावित विधेयक बाल अधिकारों के खिलाफ है और इससे अपराध और बढ़ ही जाएंगे। उनके मुताबिक अन्य देशों में कानूनी तौर पर नाबालिग की उम्र कम करने से अपराध की दर में कोई कमी नहीं आई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन रूल्स 2007 का हवाला देते हुए कहा कि रिहाई के बाद अपराधी के बारे में एक इंडिविजुअल केयर प्लान यानी समाज में दोबारा शामिल करने की योजना बनाई जाए। इसमें समाज सेवी और बाल कल्याण अधिकारी के अलावा खुद अपराधी की सलाह भी ली जानी चाहिए। नियम 55 के तहत बनाई गई एक मैनेजमेंट कमेटी इस योजना की समीक्षा करेगी और ये भी तय करेगी कि रिहाई के वक्त अपराधी को सुधार गृह में भेजा जाए या उसके अभिभावकों को सौंपा जाए। दिव्या आर्य, BBC दिल्ली।
तो दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया मामले में नाबालिग अपराधी की रिहाई पर रोक लगाने से किया इनकार। ये थी दिव्या आर्या की रिपोर्ट। और अब बात फिल्मों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन की। शाहरुख खान की आज रिलीज हुई फिल्म दिलवाले का देश के कुछ हिस्सों में विरोध हुआ। वहीं आज रिलीज हुई रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म बाजीराव मस्तानी का भी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में विरोध हुआ। विरोध प्रदर्शन के बाद सिनेमाघरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
रंग दे तुम गेरुआ। फैंस का दिल जीतने रुपहले पर्दे पर दिलवाले बनकर उतरे शाहरुख खान को बीते दिनों दिए एक बयान को लेकर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। असहिष्णुता पर शाहरुख खान के बयान से नाराज लोगों ने देश के कुछ हिस्सों में आज रिलीज हुई उनकी फिल्म दिलवाले का विरोध किया। स्थानीय पत्रकार आलोक पुतुल के मुताबिक छत्तीसगढ़ के भिलाई में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिलवाले का प्रदर्शन कर रहे एक सिनेमा हॉल पर पत्थर फेंके, इसके बाद फिल्म का प्रदर्शन रोकना पड़ा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ में कुछ सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म के पोस्टर जलाए गए और शाहरुख खान के खिलाफ नारे लगाए गए। हालांकि ज्यादातर सिनेमा हॉल में दोपहर के बाद शो फिर शुरू हो गए थे। स्थानीय पत्रकार अंकुर जैन के मुताबिक गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और महसाणा में भी दिलवाले फिल्म का विरोध हुआ। स्थानीय पत्रकार आभा शर्मा के मुताबिक राजस्थान की राजधानी जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर में भी दिलवाले का विरोध हुआ। यूपी के गाजियाबाद के वैशाली इलाके में भी कुछ लोगों ने सुबह के वक्त फिल्म का विरोध किया था, लेकिन एसपी सिटी अजय पाल के मुताबिक इसका फिल्म के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं हुआ। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में शिवसेना के युवा संगठन युवा सेना ने दिलवाले का प्रदर्शन रुकवा दिया। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म बाजीराव मस्तानी का विरोध हुआ। देवीदास देशपांडे के मुताबिक पुणे के सिटी प्राइड कोथरूड में आज सारे शो रद्द कर दिए गए। कोथरूड से भारतीय जनता पार्टी की विधायक मेधा कुलकर्णी ने कहा,
आणि श्रीमंत बाजीराव पेशवे प्रतिष्ठानच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करते।
भारतीय जनता युवा मोर्चा और पेशवा बाजीराव प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इस फिल्म का शो बंद कराया। हमारी इतनी ही मांग थी कि इस फिल्म के दो गानों को हटाया जाए, क्योंकि उसमें इन ऐतिहासिक पात्रों का गलत चित्रण किया गया है। हमने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी और सांस्कृतिक मंत्री के द्वारा सेंसर बोर्ड से भी इस बारे में विनती की थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा।
महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बाजीराव मस्तानी के विरोध को भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी बताया। शिवसेना नेता संजय राउत ने बाजीराव मस्तानी फिल्म का समर्थन किया है। जिन जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं वहां सिनेमा हॉल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विरोध प्रदर्शन के बीच एक बार फिर असहिष्णुता के मुद्दे को लेकर जारी बहस गर्म हो गई है। सवाल यह है कि विरोध जाहिर करने के लिए फिल्मों के प्रदर्शन को रुकवाना कितना ठीक है।
तो दिलवाले और बाजीराव मस्तानी का हो रहा है भारत के कुछ भागों में विरोध। ये थी वात्सल्य राय। और अब समय है विवेचना का। आज भी जब कभी भारतीय फिल्मों के संवेदनशील कलाकारों का जिक्र होता है तो उसमें स्मिता पाटिल का नाम शुमार होता है। स्मिता पाटिल का फिल्मी सफर सिर्फ 10 साल का रहा, लेकिन काम ऐसा कि आज भी वो चर्चा में रहता है। लेकिन वो ना सिर्फ फिल्मों बल्कि राज बब्बर से अपने संबंधों की वजह से भी चर्चा में रही। सिर्फ 31 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत आज भी रहस्यमयी है। 13 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि थी। स्मिता पाटिल के फिल्मी सफर और निजी जिंदगी के को करीब से देखती श्वेता सिंह की विवेचना।
तुमको छोड़ने कौन आया था?
ऊपर से देखा नहीं था क्या?
देखा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। उस फिल्म डायरेक्टर वाला किस्सा दोहराना चाहती हो क्या?
और कितनी बार बताना पड़ेगा उस बात का जिक्र तक पसंद मुझे। जख्म को कुरेद कुरेद
डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है।
तो मरने क्यों ले दिया मुझे? क्यों वापस ले आए?
स्मिता पाटिल, याद है ना वो सांवली सी लड़की?
मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो?
समय चोर हो।
बकवास
बकवास, तुमने चोरी की है?
मैंने चोरी नहीं की, मैंने नमूना मांगा, तुमने मना कर दिया।
फिर भी लिया?
हाँ हाँ फिर भी लिया, मगर उसके पैसे भी वही।
पैसा का मैं कुछ नहीं जानू साहब, दूध लिया है नहीं लिया पूरा गांव को यहाँ बुला लूंगी।
जितनी बार पर्दे पर आई कुछ ना कुछ कमाल दिखा कर गयी। छोटी सी उम्र में स्मिता ने ऐसे फिल्मों में काम किया जो कि भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर बन गई। भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला, मंडी, अर्थ, अर्धसत्य जैसी कलात्मक फिल्मों की लंबी कतार में चक्र, शक्ति, निशांत और नमक हलाल जैसी कमर्शियल फिल्में भी शामिल हैं। अपने सशक्त अभिनय से पहचान बनाने वाली इस एक्ट्रेस को जब नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, शबाना आजमी, अमरीश पुरी, अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला तो वो उनसे पीछे नहीं रही। नाना पाटेकर ने पहली फिल्म की आज की आवाज और उसमें उनका सामना हुआ स्मिता पाटिल से।
तो मेरी वो बहुत अच्छी दोस्त थी एक थिएटर की होने के नाते, और मैं कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं थिएटर करता रहूं, थिएटर से ही लगाव था। एक दिन कही किस फिल्म के लिए मेरे पास, नाना तू आना जरूर, वहां बी आर चोपड़ा जी थे उनके पास बुलाना था। तो मैंने कहा स्मिता मुझे नहीं करना फिल्मों में काम। इसे नहीं, आके तो जा देख ले, अगर तुझे नहीं अच्छा लगा तो मत कर। अब वहां गया मैं तो ये आज की आवाज करके थी, उसमें वो जो चार गुंडे थे उसमें से एक रोल मुझे ऑफर किया। तो मैंने बहुत गंदी तरीके से बात की रवि चोपड़ा के साथ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मतलब घमंड तो इतना था ना तब थी। तो नीचे स्मिता मिली, क्या इंटरव्यू हुआ ना उसके ऊपर मैं उबल पड़ा। तो कहती नहीं 2 मिनट। मैंने कहा नहीं यार, इनको समझ में नहीं आता, किसी इज्जत नहीं करना जानते। अरे नहीं यार, बहुत अच्छा आदमी है, तो ऐसे मत कर, तू ठहर थोड़ी देर। तो वो ऊपर गई, थोड़ी देर के बाद आई, मुझे कहती है कि अच्छा तू वो रोल मत करना, ये रोल करेगा तू, जो आखिर में मैंने किया।
खुद को काली कहने वाली स्मिता पाटिल 17 अक्टूबर 1955 में पुणे में पैदा हुई। सांवले रंग की छोटी सी बच्ची के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर इनकी माँ विद्याताई पाटिल ने इनका नाम स्मिता रख दिया। स्मिता के पिता शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि उनकी माँ समाज सेविका। स्मिता अपने बचपन में स्कूल के एक नाटक का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन जब प्रिंसिपल ने इन्हें नहीं चुना तो ये निराश हो गई। लेकिन स्मिता को तो अभी लंबा सफर तय करना था। नाना पाटेकर कहते हैं,
स्मिता में जो और नूतन जी में जो एक कॉमन बात यह है कि उनकी आंखें इतना कुछ बोल देते थे, और अच्छे ऐसा आर्टिस्ट आपके साथ होना तो आपकी फिल्म कहां से कहां पहुंच जाती है, और अपनी एक राय रखती थी वो, उसे अगर कोई चीज पसंद नहीं आई, सही नहीं लगी तो वो बेझिझक बोल देती थी। और ये बहुत कम है आजकल, तो ऐसे होता है ना कि नहीं आपको क्या लगेगा, तू क्या सोचेगी, तो कैसे बोलो, जाने दो ना, कम से कम यार रिश्ता तो गुरबुक्स में तो रहना है। वो नहीं था उसका, मैं तो ऐसी हूँ, ले लो नहीं तो भूल जाओ।
फिल्मों में आने से पहले स्मिता पाटिल बॉम्बे दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ा करती थी। समाचार पढ़ने के लिए उन्हें साड़ी पहनना जरूरी होता था, और स्मिता को जीन्स पहनना आसान लगता था। तो स्मिता ने एक आसान तरीका निकाला, जीन्स के ऊपर ही साड़ी लपेटना। और ऐसा कहा जाता है कि श्याम बेनेगल ने स्मिता को पहली बार टीवी पर समाचार पढ़ते हुए ही देखा था। तो कैसे स्मिता उनकी फिल्म चरणदास चोर का हिस्सा बन गई, श्याम बेनेगल याद करते हैं।
मेरे एक साउंड रिकॉर्डिस्ट इंद्र घोष एंड ही मेंशन टू मी दैट देयर वाज ए यंग
मेरे एक साउंड रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे हितेंद्र घोष, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी एक दोस्त है स्मिता पाटिल, वो पुणे से है पर फिलहाल वो बॉम्बे में है क्योंकि उनके फादर महाराष्ट्र कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। मैंने तय किया कि मैं उस लड़की से मिलूंगा। मैं स्मिता से मिला और मैंने तय किया कि मैं इस लड़की का एक ऑडिशन लेना चाहता हूँ। निशान से पहले मैंने स्मिता पाटिल को बाल फिल्म चरणदास चोर में प्रिंसेस के रोल के लिए चुना, और जब छत्तीसगढ़ में मैंने फिल्म की शूटिंग शुरू की तब मैंने पाया कि ये लड़की बहुत टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट है, और तभी मैंने तय किया कि स्मिता ही फिल्म निशांत में मेरे साथ काम करेगी।
चरणदास चोर यूं तो बाल फिल्म थी, लेकिन इससे स्मिता फिल्मी दुनिया में अपना कदम रख चुकी थी।
चरणदास, तुमने हमारे खजाने से सिर्फ 10 मरे चुराए।
1977 स्मिता पाटिल के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुआ। इसी साल उनकी फिल्म भूमिका आई।
हरिया की खुशखबरी सुनानी है, ये मेरे होने वाले पति देव है।
इस फिल्म के लिए स्मिता पाटिल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इसके भी निर्देशक श्याम बेनेगल थे।
स्मिता पाटिल के निभाए गए हर किरदार बहुत दमदार थे, पर मुझे भूमिका में निभाया गया उनका किरदार बहुत पसंद था। मुझे याद है जब हम इस फिल्म की शूटिंग बाहर कर रहे थे तब साउथ अमेरिका के एक जाने माने निर्देशक चाहते थे कि स्मिता पाटिल उनके साथ काम करे, लेकिन स्मिता ने ना कह दिया। कारण मुझे नहीं पता, कैमरे के सामने स्मिता पाटिल की एक्टिंग इतनी सहज होती थी कि शायद ही कोई और एक्ट्रेस हो।
फिल्म भूमिका से स्मिता पाटिल का जो सफर शुरू हुआ वो चक्र, निशांत, आक्रोश, गिद्ध, अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों तक जारी रहा। वर्ष 1981 में आई फिल्म चक्र में स्मिता पाटिल ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को पर्दे पर जीवंत बना दिया, और इसके साथ ही फिल्म चक्र के लिए वो दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गईं।
क्या बैठा है सुबह सुबह, आँख फूट जाएंगी तेरी, जा।
80 का दशक आते आते स्मिता पाटिल व्यावसायिक सिनेमा की ओर भी अपना रुख कर चुकी थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्मों में काम किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने अर्थ, अर्धसत्य, मंडी और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवा लिया।
मैं जान दे दूंगी लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगी।
1987 की मिर्च मसाला ने निर्देशक केतन मेहता को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी।
मिर्च मसाला मेरी तीसरी फिल्म थी, और जब मैंने स्क्रिप्ट खत्म की और पता चला कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से वो जो स्क्रिप्ट है वो अप्रूव हो गई है, तो मैं लोकेशन देखने गया गुजरात में, और उस फिल्म में मिर्च का बहुत ही महत्व का रोल है, और मैं गया तो देखा कि जब मैच की सीजन थी वो तो शुरू हो चुकी थी और वो 2 महीने में मैच की सीजन जो है वो खत्म होने वाली थी। तो मैं भाग के मुंबई वापस आया और स्मिता के पास गया क्या कि भाई ये तो सीजन जो है वो 2 महीने में खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने किसी भी तरह से जोड़ तोड़ के अपनी डेट्स जो है वो बाकी फिल्मों से निकाली और इस फिल्म के लिए राजी हो गई और तैयार हो गए। और सीन्स ऐसे थे कि एक मिर्च फैक्ट्री के अंदर ये औरतें काम करती हैं, तो गर्मी का मौसम था, चारों तरफ मिर्च बिछी हुई थी, धूल और मिर्च का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन था, उसके बावजूद एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए काम किया। तो उसकी जो स्पिरिट थी स्मिता की वो कुछ गजब की स्पिरिट थी जिसने हम सबको इन्फेक्ट किया।
स्मिता पाटिल को जहां उनके किरदारों के लिए सराहा गया, वहीं दूसरी तरफ उन्हें फिल्म एक्टर राज बब्बर से जुड़े संबंध को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। स्मिता पाटिल की जीवनी। स्मिता पाटिल अब ब्रीफ इनकैंडेसेंस लिखने वाली मैथिली राव कहती हैं
कि माँ तो एकदम खिलाफ थी उसके बारे में। वो तो बोलती थी कि मेरी बेटी जाके दूसरी की शादी तोड़ने की जैसा वो नहीं चाहिए और विमेन्स राइट्स के लिए ये तो लड़ती है, तो जाके वो कैसी सेकेंड वुमन इन ए मैरिज कैसे बन सकती है। तो उसका माँ का रिश्ता बहुत नाजुक था वो टाइम पर। उसका फादर तो इज वेरी ओपन। वो बहुत बहुत उसे दुख लगा क्योंकि उसकी माँ उसकी रोल मॉडल थी और माँ का अप्रूवल वॉज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर स्मिता। माँ को भी बहुत अफसोस हो रहा था कि क्यों मेरा रिश्ता मेरे बेटी के साथ आखिर टाइम पर रिश्ता थोड़ा खराब हो गया था।
प्रतीक को जन्म देने के कुछ ही समय बाद 13 दिसंबर 1986 को स्मिता ने इस दुनिया को विदा कहा। उनकी मौत अचानक थी, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। फिल्म समीक्षक मैथिली राव।
ब्रीच कैंडी में हुआ था डिलीवरी और घर पर आ गई, उसे फीवर शुरू हुआ था कि इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, वायरल एंसेफलाइटिस, ब्रेन इन्फेक्शन आ गया था। तो बहुत जल्दी हॉस्पिटल जाने के लिए वो मानती नहीं थी। मैं बोलती मैं अपने बेबी को छोड़ के मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, घर में ही ट्रीटमेंट चलेगा। तो बाद में जब ही सीरियस हो गया था तो उसे जसलोक में एडमिट किया गया। चांसेस रहते से कंप्लीट ऑर्गन फेलियर एक के बाद एक। मगर राज बब्बर हॉस्पिटल में पहुंचे, मगर उस टाइम पर जब तक इसने डिसाइड कर लिया था स्मिता ने कि बेबी होने के बाद मैं रिश्ता तोड़ दूंगी। उसे बहुत लोनली थी, जो वादा किया था कि डिवोर्स करके इसे शादी करेगा उसने नहीं किया है।
मिर्च मसाला में अभिनेत्री दीप्ति नवल ने भी काम किया था। वो याद करती हैं जब आखिरी बार उनकी स्मिता से बात हुई।
फोन पे बात हुई, मैं अमेरिका में थी, मैं वापस आई तो मैंने सोचा कि स्मिता के लिए एक बेल्ट खरीदा जिसमें वो पाउच सा होता है ना बेबी को बांध के स्टमक पे औरतें घूमती हैं, तो मैंने वो खरीदा था स्मिता के लिए कि दिस विल बी द परफेक्ट गिफ्ट फॉर हर। तो जब मैं वापस आई तो मैंने बहुत एक्साइटेडली उसको फोन किया, ऐसे मैं आती हूँ घर पे यू नो बेबी को देखना है और मैं लेके आई हूँ कुछ उसके लिए तुम्हारे लिए। तो उसने कहा कि अभी मत आओ, 3 दिन के बाद आओ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा नया घर और मेरी बेबी को एक साथ देखो। तो मैंने कहा तुम बुझी हुई साउंड कर रही हो, क्या बात। तो शी सेड नहीं ठीक है, थोड़ा थकान है। तो फिर उसके बाद 2 दिन ऐसे ही निकल गए, 3 दिन भी पूरे नहीं हुए तो हमें ये खबर आ गई कि जसलोक में वो भर्ती हो गई है वापस और कोमा में चली गई। दैट इज हाउ ट्रेजिक इट वाज।
स्मिता पाटिल की एक आखिरी इच्छा थी। उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत याद करते हैं कि वो दिन उनके लिए कितना कठिन था।
वो बोला करती थी कि दीपक मैं कभी मर जाऊं तो मेरा तुम सुहागन का मेकअप कर। वो शायद अपनी मम्मी को भी बोलती थी, घर में भी बोलती थी या जाने अनजाने में भी बोलती होगी। एक दिन उन्होंने राजकुमार जी को देखा, राजकुमार एक पिक्चर में थे तो वो लेट के मेकअप करते थे। तो स्मिता जी ने आई मुझे बोली कि नहीं नहीं तुम मेरा लेट के मेकअप करो। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं लेट का मेकअप नहीं करूंगा आपका, और वो अच्छा नहीं लगता है, वो डेथ बॉडी को मेकअप करते ऐसा लगता है। बोले नहीं नहीं मैं मरूंगी तो मुझे मेकअप मतलब सुहागन बनाना, और दुखद बात है, ये दुखद हादसा है। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में किसी मेकअप आर्टिस्ट को करना पड़ा होगा, लेकिन ये पहला वक्त था मेरे लिए। उनको सुहागन बनाया, सुहागन के कपड़े पहनाए, सुहागन की बिंदिया टिके बिके सब लगा के, और बहुत खूबसूरत लग रही थी, और ऐसे करके उनको विदा किया था और उनका अंतिम संस्कार ऐसे।
करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी।
और वाकई स्मिता पाटिल की हर बात उन्हें लोगों से अलग बनाती है और वो याद आती हैं। श्वेता सिंह, बीबीसी दिल्ली।
आप नमस्कार भारत यानी सुबह 8 बजे स्मिता पाटिल पर श्वेता सिंह की विवेचना दोबारा सुन सकते हैं। और आपको आज की विवेचना कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा, माफ़ कीजिएगा, इसे विश्व भारती में आप दोबारा सुन सकते हैं।
बीबीसी इंडिया बोल।
विवादों में है दिल्ली क्रिकेट संघ। पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली के समय में डीडीसीए निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी सीधे मोदी सरकार पर हमले कर रही है। ललित मोदी भारत में न रहते हुए भी राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बन गए। कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई से श्रीनिवासन का राज खत्म हुआ। क्रिकेट संघ क्यों बन गए हैं राजनीति के अखाड़े, और इस अखाड़े में उतरने के लिए क्यों बेताब रहते हैं नेता, इस शनिवार बीबीसी इंडिया बोल का यही है विषय। शाम 7:30 बजे फोन करें 1811-7000 और 1811-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो श्रोताओं, कल 7:30 बजे इंडिया बोल में अपनी राय देना, अपने सवाल रखना ना भूलिएगा। और अब खेल समाचारों की बात कर लेते हैं। लाइव स्टूडियो में मेरे साथ हैं आदेश कुमार गुप्त। आदेश जी, ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए कल भारतीय टीम का चुनाव होगा, क्या खबरें हैं?
जी हाँ बिल्कुल, और सबकी नजरें रहेंगी। दरअसल पिछले दिनों अपनी ही जमीन पर दक्षिण अफ्रीका से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 3-0 से जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम अब अगले साल ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां वो 5 एक दिवसीय और 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज खेलेगी। भारतीय टीम की कमान एक दिवसीय और 2020 मुकाबलों में महेंद्र सिंह धोनी संभालते हैं, जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के हाथों एक दिवसीय और 2020 दोनों ही सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत को बांग्लादेश से भी एक दिवसीय सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद ऐसा लगता नहीं है कि उनकी कप्तानी को कोई खतरा होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चयनकर्ता फिट हो चुके तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले मुरली विजय को टीम में जगह देते हैं या नहीं। रविंद्र जडेजा की भी भारतीय एक दिवसीय टीम में वापसी लगभग तय है, क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बहुत ही शानदार खेल दिखाया। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में वैसे पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला 12 जनवरी को और तीसरा और आखिरी 2020 मुकाबला 31 जनवरी को खेलेगी। वैसे ये भी देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी तो किस तरह का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जितने भी टेस्ट मैचेस खेले गए थे भारतीय टीम वहां पर हारी, और उसके बाद एक ट्रायंगुलर वनडे सीरीज़ हुई वहां पर भी भारत को हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जब विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ तो वहां भारत ने किसी तरह से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सेमीफाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा। उधर अगर आज क्रिकेट मुकाबले की बात की जाए, जहाँ न्यूजीलैंड और श्रीलंका हैमिल्टन में दूसरे टेस्ट मैच में आमने सामने हुए, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। आज स्टंप के समय तक श्रीलंका ने 7 विकेट खोकर 264 रन बना लिए थे। श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज 63 और दुष्मुथा चमीरा बिना कोई रन बनाए नाबाद थे। श्रीलंका के मिलिंदा श्रीवर्धना ने 62 और विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश चांदीवल ने भी 47 रनों का योगदान दिया। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 43 रन देकर 2, टिम साउदी ने 51 रन देकर 2 और डग ब्रेसवेल ने 79 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। और सुशीला जी, कल सबकी नज़रें रहेंगी देर रात विजेंद्र सिंह के अपने तीसरे प्रोफेशनल मुकाबले पर, जहां उनका सामना बुल्गारिया के अनुभवी समेट दुसिनोव से होगा। दुसिनोव ने चेतावनी दी है कि मैं इस भारतीय मुक्केबाज को जो लगभग नाटक करते हैं
जी
नॉकआउट कर देंगे, और विजेंद्र सिंह ने भी कहा है कि मैं अपना जवाब रिंग में दूंगा। तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद
है। देखते हैं कल किसको कौन जवाब देता है। बहुत बहुत धन्यवाद खेल समाचारों के लिए, और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2012 के निर्भया बलात्कार मामले में दोषी लोगों में से एक की रिहाई को रोकने से इनकार कर दिया है। वेटिकन ने इस बात की पुष्टि की है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा को संत के तौर पर मान्यता दी जाएगी। रूसी जांचकर्ताओं ने पिछले महीने सीरियाई सीमा पर तुर्की द्वारा गिराए गए लड़ाकू विमान के फ्लाइट रिकॉर्डर को खोला है। इस पूरी प्रक्रिया को पत्रकारों, विदेशी राजनयिकों और लाइव टीवी कैमरा के सामने अंजाम दिया गया। अफ्रीकी संघ ने घोषणा की है कि वो बुरुंडी में नागरिकों की हिफाजत के लिए 5,000 शांति रक्षक सैनिक भेजेगा, चाहे उसे बुरुंडी सरकार की सहमति मिले या ना मिले। खबर है कि यमन के उत्तर में सैकड़ों सरकारी सुरक्षा बलों ने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र को फिर हासिल कर लिया है। बीबीसी समाचार,
मुख्य समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।